ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 1 सितंबर 2019 के लिए है। विषय: यीशु मसीह। स्वर्णपथ। प्रकाशित वाक्य: मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। उत्तरदायी ध्यान इफिसियों। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धानी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वो अपनी कृपया से, जो मसीह यीशु में हम पर आने वाले समों में अपने अनुग्रह का असीम दान दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरुण परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घुमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। तब यशी के ठोंट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धाम से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सौंते से मारेगा और अपनी फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। यूहन्ना। और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था, तब यहूदियों ने उसे आघेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीहा है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, वही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वो कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पथराव करने के लिए फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तो जिस पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो तुम मेरी प्रतीति ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति ना भी करो, परंतु उन कामों की प्रतीति तो करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तब उन्होंने फिर उसको पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वो उनके हाथ से निकल गया। यूहन्ना। तब यीशु ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ये तो इब्राहिम ने नहीं किया था, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरुण झूठ का पिता है। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर में से निकल गया। लूका। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माँ और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों बारन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपनी सूली ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो डाल कर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा लेकिन तैयार ना कर पाया। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मलाप करना चाहेगा। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वो आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और समर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वो निकल जाती हैं। इब्रानियों। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवत और प्राबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार चीरता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मसीह भगवान की दिव्य अभिव्यक्ति जो अवतार त्रुटि को नष्ट करने के लिए मांस के साथ आती है। नासरत के यीशु के आगमन ने मसीही युग की पहली शताब्दी को चिन्हित किया, लेकिन मसीह वर्षों या दिनों की शुरुआत के बिना है। मसीही युग के पहले और बाद में सभी पीढ़ियों के दौरान आध्यात्मिक विचार के रूप में मसीह भगवान का प्रतिबिंब शक्ति और अनुग्रह के कुछ उपाय के साथ आया, जो सभी मसीह सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इब्राहिम, याकूब, मूसा और सभी नबियों ने मसीह या मसीहा की शानदार झलकियां पाईं, जिसने दिव्य प्रकृति प्रेम के सार में इन दर्शिताओं को बपतिस्मा दिया। ईश्वरी छवि विचार या मसीही ईश्वरी सिद्धांत ईश्वर से अविभाज्य था, है और हमेशा के लिए रहेगा। यीशु ने अपनी इस आध्यात्मिक पहचान की इस एकता का उल्लेख किया, पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। मैं और पिता एक हैं, पिता मुझसे बड़ा है। एक आत्मा में सभी पहचान शामिल हैं। आदर्श मसीह तथाकथित व्यक्तिगत इंद्रियों के लिए अगुचर था, जबकि यीशु एक शारीरिक वास्तविक के रूप में दिखाई दिया। अनदेखा और देखा, आध्यात्मिक और भावतिक, शाश्वत मसीह और शारीरिक यीशु का मांस में प्रकट होने का ये दोहरा व्यक्तित्व मास्टर के स्वर्गारोहण होने तक जारी रहा, जब मानव भावतिक अवधारणा या यीशु गायब हो गया, जबकि आध्यात्मिक आत्मा या मसीह दिव्य विज्ञान के अनंत क्रम में मौजूद है, दुनिया के पापों को दूर कर रहा है जैसा कि मसीह ने हमेशा किया। इससे पहले भी मानव यीशु नश्वर आंखों के लिए अवतार था, एक मानव रूप में पहने हुए, अर्थात जैसा कि यह नश्वर दृश्य लगता था, एक मानव मन द्वारा कल्पना की जा रही थी। यीशु सत्य और त्रुटि के बीच, आत्मा और मांस के बीच मध्यस्थ था। ईश्वरी विज्ञान के तरीके को समझते और प्रदर्शित करते हुए वो उन सभी के लिए मुक्ति का मार्ग बना जिन्होंने उसके वचन को स्वीकार किया। उससे नश्वर जान सकते हैं कि बुराई से कैसे बचा जाए। विज्ञान को उसके निर्माता से जोड़ा जा रहा असली आदमी नश्वर को केवल पाप से मोड़ने की ज़रूरत है, और मसीह वास्तविक व्यक्ति और भगवान के साथ उसके संबंध को खोजने के लिए और दिव्य पुत्रात्व पहचानने के लिए नश्वर स्वार्थ की दृष्टि होनी चाहिए। मसीह सत्य को यीशु के माध्यम से शरीर पर आत्मा की शक्ति को साबित करने के लिए प्रदर्शित किया गया था, ये दिखाने के लिए कि सत्य को मानव मन और शरीर पर इसके प्रभाव बीमारी को ठीक करने और पाप को नष्ट करने के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। यीशु ने उसे बाहर निकालने से पहले पाप का खुलासा किया और उसे फटकार लगाई। एक बीमार महिला के बारे में उसने कहा कि शैतान ने उसे बाधे किया था, और पतरस से उसने कहा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। वो आदमी को सिखा रहा था और दिखा रहा था कि पाप, बीमारी और मृत्यु को कैसे नष्ट किया जाए। उसने फल राहित वृक्ष के बारे में कहा, ये कट गया है। ये कई लोगों द्वारा माना जाता है कि एक निश्चित मजिस्ट्रेट जो यीशु के समय में रहता था, उसने ये कठान दिया। उसकी फुटकार भयभीत है। हमारे मास्टर की कड़वी भाषा इस विवरण की पुष्टि करती है। गलती के लिए उसने जो एकमात्र सजा दी थी वो ये थी, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु का तिरस्कार तेज और गहन था। इसका मजबूत प्रमाण उसके मजबूत शब्दों में मिलता है। इस तरह की जुबान बोलने की आवश्यकता को दिखाते हुए जब उसने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला और बीमार और पापी को ठीक किया। यदि बीमारी वास्तविक है तो ये अमृता से संबंधित है। अगर ये सच है तो ये सत्य का एक हिस्सा है। क्या आप सत्य की गुणवत्ता या स्थिति को नष्ट करने के लिए दुआओं के साथ या बिना प्रयास करेंगे? लेकिन अगर बीमारी और पाप भरम है तो इस नश्वर सपने से जागृति या भ्रम हमें स्वस्थ, पवित्रता और अमरता में लाएगा। ये जागृति हमेशा के लिए मसीह के आने की है। सत्य का उन्नत रूप है जो त्रुटि को बाहर निकालता और बीमारों को भर देता है। ये वो मोक्ष है जो ईश्वर के माध्यम से आता है, दिव्य सिद्धांत प्रेम जैसा कि यीशु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यीशु ने जो सिंचाई सिखाई, प्राचीनों ने उसका मजाक उड़ाया। क्यों कर? क्योंकि ये उन लोगों से अधिक की मांग करता था जिसका वो अभ्यास करने के लिए तैयार थे। उनके लिए राष्ट्रीय देवता में विश्वास करना पर्याप्त था, लेकिन उस विश्वास ने हमारे समय से कभी भी ऐसा शिष्य नहीं बनाया जो बुराइयों को मिटा सके और बीमारों को ठीक कर सके। केवल कुछ लोग ही यीशु के दिव्य जीवन यापन के लिए उपदेशों को समझते हैं या उनका पालन करते हैं। क्यों कर? क्योंकि उनके उपदेशों के लिए शिष्यों को दाहिने हाथ को काटकर दाहिनी आंख को निकालना पड़ता है। इसका मतलब है कि मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए, यहां तक कि सबसे पोषित मान्यताओं और प्रथाओं को अलग करना। जब हम यीशु को मानते हैं और जो कुछ उसने नश्वर के लिए किया उसके हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अपने प्यार के रास्ते को केवल महिमा के सिंहासन तक फैलाकर हमारे लिए रास्ता तलाश करने वाली व्यर्थ पीड़ा में फिर भी यीशु ने हमें व्यक्तिगत अनुभव नहीं दिया, अगर हम उसकी आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करें और सभी ने अपने प्रेम के प्रदर्शन के अनुपात में पीने के लिए दुखड़ प्रयास किए, जब तक सभी दिव्य प्रेम के माध्यम से मुक्त नहीं हो जाते। मसीह आत्मा था जिसे यीशु ने अपने स्वयं के ऐसे बयानों में निहित किया था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। उसका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है और मनुष्य के लिए वो क्या कर सकता है। अपने स्वयं के पंखों के नीचे बीमारी और पापी लोगों को इकट्ठा करके सत्य का अमर विचार सदियों से चल रहा है। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करेगा, जब वो ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता और उस परमात्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है। वादे पूरे होंगे, दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है, और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की विधि पर अपने संसारिक स्तर को रखता है वो अब मसीह के प्याला को पीता है और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।